ओम शांति। जर्मनी के एक लेखक ने एक काल्पनिक वृत्तांत लिखा है। उसने लिखा है कि एक राजा अपने सभी मंत्रियों और साथियों के साथ एक बार आखेट के लिए जंगल जाता है। कई सारे मंत्री है और कई सारे सैनिक साथ है और दोपहर का समय होता है और भोजन का समय हो जाता है। मेज सजती है, सारा भोजन परोसा जाता है और राजा और उसके साथी भोजन के लिए बैठते हैं। भोजन इतना स्वादिष्ट है और उसकी सुगंध चहुओर फैली हुई है। चींटियों की नगरी का एक गुप्त संदेशवाहक चींटी को यह खबर मिलती है कि बहुत बढ़िया भोजन आया हुआ है और वो छोटी सी चींटी जो कि गुप्तचर है चींटियों के देश की, उस सुगंध का पीछा करते करते उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां वो ढेर सारा छप्पन प्रकार का भोजन परोसा गया है और वो देखकर उसे नशा चढ़ जाता है। इतना भोजन, तुरंत भागती भागती जाती है और मंत्री को खबर देती है और यह बात धीरे धीरे चींटियों की नगरी में जितनी चींटियां थी उन सब तक पहुंच जाती है। और भोजन की ऐसी बात उन्होंने आज तक सुनी ना थी। सारी चींटियां मदमस्त नशे में हो जाती है। चींटियों के राजा तक बात पहुंचती है। और उसे यह भी पता चल जाता है कि चींटियों की क्या हालत हो रही है। एक एक चींटी जैसे पागल हुई जा रही है, इतना उसे नशा चढ़ गया है क्योंकि ऐसा भोजन चींटियों के संपूर्ण इतिहास में किसी भी चींटी को प्राप्त न हुआ था। जो वर्णन गुप्तचर ने बताया था वो बहुत अद्भुत था और सारी चींटियां लगभग पागल सी हो गई थी। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने कहा, सबसे पहले मैं जाकर देखूंगा कि सही में ऐसा है या नहीं। और राजा खुद, चींटियों का राजा जब खुद गया और उसने देखा कि वाकई में भोजन तो बहुत सारा है और बहुत स्वादिष्ट भी होगा क्योंकि सुगंध ही ऐसी है। फिर वो वापस आया और उसने वजीरों की अपनी बैठक बुलाई। भोजन तो प्राप्त करना है परंतु पहले चींटियों का क्या करे, ये तो भोजन तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगी, इतना उनको नशा चढ़ गया है। एक एक चींटी झूम रही है। तो वो कहता है, ये जो समस्या है इसको निपटने के लिए हमको वही करना पड़ेगा जो मनुष्य करता है। वजीरों ने कहा, मनुष्य क्या करता है? राजा ने कहा, एक बड़ा पर्दा, एक स्क्रीन लेकर आओ और उस पर चित्र निकालो भोजन के। जो भोजन वहां था वैसे ही चित्र यहां निकाले जाए और उसमें थोड़ी सुगंध भी छिटक दी गई और सभी चींटियों को कहा गया कि यही वो भोजन है। और सारी चींटियां आ गई हजारों, और वो जो पर्दा था बस उसी में गोल गोल घूमने लगी, और उनको उसी में आनंद आने लगा क्योंकि भोजन भी दिख रहा था और सुगंध भी आ रही थी, परंतु मिल कुछ नहीं रहा था। फिर भी नशा इतना था, पागल इतनी ज्यादा हो गई थी कि उस झूठे भोजन के संग में विक्षिप्त सी हो गई थी। जर्मन ऑथर जॉर्ज गुर्जियफ की लिखी हुई ये कहानी। वो दार्शनिक जॉर्ज गुर्जियफ कहता है, द मैन इज लाइक दोज एंट्स हु आर इंटॉक्सिकेटेड एंड लॉस्ट इन द अट्रैक्शन ऑफ द फॉल्स। मनुष्य की स्थिति भी ऐसी ही है, जो कि झूठ है, जो कि असत्य है, जो कि मिथ्या है, उसी के संग में, उसी के प्रभाव में और उसी के रंग रूप में डूबा हुआ, सत्य से कहीं दूर, वास्तविकता से दूर, उसी में मदमस्त है। जो झूठ है उसी को पकड़े हुए, जो झूठ है उसी के संग में रहता है और उसी में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। आज सुबह की साकार मुरली, बाबा ने कहा तुम्हें संपूर्ण पवित्र का संग मिला है, आत्मा है संपूर्ण अपवित्र। कहावत है, संग तारे कुसंग डुबोए बोरे बर्बाद कर दे। हम किस संग में हैं? क्या हमारी भी हालत उन चींटियों की तरह तो नहीं, जो असत्य को पकड़े हुए, जो असत्य से आकर्षित है, जो मिथ्या है, चाहे वो विचार है, भावना है, संबंध है, वस्तु है, कल्पना है, कोई चिंता, अतीत में घटने वाली कोई दुखद घटना जिसका आप कोई अस्तित्व नहीं, परंतु फिर भी उसको पकड़े हुए है और वर्तमान हाथ से छूटा जा रहा है। तो हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पर, संग तारे कुसंग बोरे। ब्राह्मण जीवन में किसका संग करना है, कौन सा सत्संग है और कौन सा कुसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जिस संग में हैं वो कौन सा संग है इस समय, ऐसे वो कौन से संग है जिससे दूर रहना है, और ऐसे वो कौन से संग है जिसके साथ चलना है। संग की कला, द आर्ट ऑफ कंपनी। यदि हम सूक्ष्म से स्वयं को देखें तो शायद मन के गहरे तल में, अवचेतन मन के तल में हमने कुछ ऐसे संग किए हैं, कुछ ऐसी आदतें पाल के रखी है जो श्रीमत विरोधी है, एंटी श्रीमत हैबिट्स। सात प्रकार के संग हैं जो हमें करने हैं और सात प्रकार के कुसंग हैं जिनसे हमें दूर भागना है। सबसे पहला संग परमात्मा संग। इस संसार का सबसे ऊंचा संग है सत्संग, अर्थात सत का संग, जो निरंतर सत है। दो शब्द है भाषा में, एक है सत, एक है सत्य, दोनों में भी अंतर है। क्या अंतर है? सत और सत्य में क्या अंतर है? भाषा कहती है, शब्दकोश कहता है दोनों एक है, परंतु तत्व ज्ञान कहता है दोनों अलग है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत अर्थात जो तीनों कालों में सत्य है वो सत। एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति, सत एक ही है परंतु अलग अलग ज्ञानी ब्राह्मण अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। तो सर्वोत्तम संग है ब्राह्मण जीवन का सत संग, अर्थात उस सत का संग, उस परमात्मा का संग। इससे ऊंचा और कोई संग नहीं है, दी हाइएस्ट कंपनी। किसी एक विदेशी लेखक ने लिखा है, When I forget that God is my supreme companion, I feel lonely। जब मैं ये भूल जाता हूं कि वो परमात्मा मेरा परम साथी है, बस उसी क्षण मुझे अकेलापन महसूस होता है। नहीं तो मुझे अकेलापन कभी नहीं लगता। जब जब मैं उस साथी को भूला हूं, जब जब मुझे ये विस्मृति हुई है कि वो मेरा साथी है, परम सखा है, तब तब उदासी ने मुझे घेर लिया, अकेलापन आ गया, एक अज्ञात सी उदासी छा गई। उदासी को क्या कर दो, स्लोगन था ना, क्या करो उदासी बना दो, और क्या करो, उदासी को उदासी बना दो। तो सर्वोच्च संग है ईश्वर, ये है सत्संग। और कुसंग क्या है फिर, विकारों का संग है कुसंग। आज की मुरली से ये पांच विकारों का संग कुसंग है। पांच विकारों से कोई भी एक विकार यदि भावनाओं में, विचारों में, संकल्प में, स्मृतियों में, स्वप्न में, कल्पनाओं में, दृष्टि में, वृत्ति में कहीं ना कहीं है, तो वो कुसंग चल रहा है और डुबो देगा। ब्राह्मण जीवन की ये नाव डूब जाएगी। असत्य की नैया हिलती डुलती नहीं है, सीधा डूबती है। वो सत्य की नैया है जो हिलती डुलती पर डूबेगी नहीं, परंतु असत्य की जो नाव है सीधा चलती है। ऊपर से दिखता है कितना अच्छा चल रहा है इनका, एक हम है सत्य को पकड़ के फंसे, सहन करते रहते, और ये देखो झूठ के साथ कितने अच्छा चल रहे हैं। परंतु असत्य की नैया का स्वभाव है वो कभी हिलती डुलती नहीं, डायरेक्ट डूब जाती है, एक दिन गायब असत्य के महासमंदर में। तो विकारों के सूक्ष्म संघ का त्याग कर देना है। बाबा ने कहा तलाक दे दो विकारों को, इन विकारों ने अपहरण किया है। द वाइसेस हाईजैक्स द इंटेलेक्ट, बुद्धि का अपहरण कर दिया है, सत सत विवेक का अपहरण कर दिया है। इसके लिए सबसे पहला संग है परमात्म संग। कैसे करेंगे, दिन भर बीच बीच में कई बार बाबा का आह्वान करो, बीच बीच में कई बार उसको धन्यवाद करो, बीच बीच में उससे मिले हुई बातों को याद करना। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, ज्यादा फायदा किस में है बताओ, बाप को याद करने में या बाप के ज्ञान को याद करने में? बाबा ने स्वयं उत्तर दिया था, बाप के ज्ञान को याद करने में। तो सबसे पहला संग है परमात्मा का, और सबसे पहला कुसंग है रावण का, विकारों का, माया का, विकारी संस्कारों का। दूसरा सत्संग है परमात्मा ज्ञान का, उसका ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को रग रग में समा लेना, ये केवल शब्द ना रह जाए, जो हाथों द्वारा हमारे नोटबुक में आ जाए बस, और वहीं रुक जाए और डायरी बंद हो जाए। इस ज्ञान को समाना है। बाबा ने आज की मुरली में एक जगह कहा है, तुमने सुना होगा, सुना नहीं हो तो सुनो, मैं सुनाता हूं, मन मना भाव। उसके वाक्यों में जादू है। इस ज्ञान का संकरना अर्थात ज्ञान को याद करते रहना, अर्थात मुरली को रिवाइज करते रहना, अर्थात मुरली को याद करते रहना, रिवाइज करते रहना, डिस्कस करते रहना। मुरली के पॉइंट्स और बातें हमारे मुख से 24 घंटे में एक बार तो निकलने चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे वो वरदान हो, स्लोगन हो, चाहे महावाक्य हो। और वो सुनाना, हम वो सुनाने को नहीं कह रहे कि किसी छोटे ग्रुप को पूरी मुरली सुना दी, वो सुनाना नहीं, चर्चा, डिस्कशन। ज्ञान की बुलबुल क्या करे, क्या करती रहे, टिकलू टिकलू करती रहे। तो दूसरा सत्संग है परमात्मा ज्ञान का संग, और दूसरा कुसंग है संसारी ज्ञान का संग, संसार के विकारी ज्ञान का संग। किसी एक विदेश की बहन ने मुझे हमसे कभी कहा था कि द्वापर से मनुष्य जो गिरा है उसका एक कारण है क्यूरियोसिटी, उत्कंठा, क्या है, विकारों को जानने की उत्सुकता। व्यक्ति विकारों को जानना चाहता है और फंस जाता है क्या विकार है, क्या समझना चाहता है और फंसता है, किताबें पढ़ता है फंसता है, देखता है और फंसता है, उत्सुकता, उत्कंठा, क्यूरियोसिटी, क्या है। तो संसार और संसार का सारा ज्ञान कुसंग है। और जब हम संसार का ज्ञान कर रहे हैं तो विकारी ज्ञान, विकारी किताबें, विकारी बातें, सब कुछ जो विकारी है। कुछ दिनों पहले लास्ट संडे की मुरली, इंदिरा गांधी को बाबा ने याद किया था। क्या सुना, कैसे सुना, जानने की दृष्टि से सुना या घबरा गए क्या होगा कैसे होगा। अभी अभी मुरली चली ना, याद है ना सबको, 30th October 1984, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुबह 9 बजे उसके ही दो अंगरक्षकों ने उसे मार दिया। 30 गोलियां चली, 7 आर पार हुई, और अगले 4 दिन 1, 2, 3 और 4 नवंबर भारत में दंगे हुए। हजारों सिख भाई बहनें मारे गए, भयंकर हलचल हुई। बाबा ने प्रश्न पूछा, कैसे देखा, कल्प पहले की स्मृति से देखा कि क्या होगा कैसे होगा, ऐसे देखा। जानकारी लेने के हिसाब से देखा कि घबरा कर देखा, कैसे देखा, फुल स्टॉप, जैसे वो फायरमैन फुल स्टॉप लगा देता है। तो दूसरा कुसंग है संसार का विकारी ज्ञान, संसार की सूचनाएं, व्यर्थ की बातें, निगेटिव बातें जो बुद्धि में भर रखी है। जिस बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश है वहां ये बातें नहीं टिक सकती, परंतु जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं है वहां इन सब बातों में बहुत इंटरेस्ट है। क्रिकेट किस किस को पसंद है, इधर नहीं देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और मैच देखते देखते अंत समय आ गया तो किसकी याद में जाएंगे? बाबा की। कौन है देखते समय? एक्साइटमेंट है, ये जीतना चाहिए, वो दे जीतना चाहिए, भाव है ये जीतना चाहिए, नहीं जीतता है तो दुख है, आक्रोश है, संताप है, एक्साइटमेंट है बहुत। बाबा याद है? एक भाई कहता था, हम भोजन भी करते हैं और टीवी भी देखते हैं, तो जब नीचे देखता हूं तो बाबा को याद करता हूं, ऊपर देखता हूं तो टीवी देख लेता हूं, फिर नीचे देखता हूं तो बाबा को याद करता हूं और ऊपर देखता हूं तो टीवी भी देखता हूं, दोनों काम साथ साथ। हथ कार्डे दिल यार्डे, इसे कहा जाता है आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, स्वयं स्वयं को धोखा देना, खुद खुद के साथ झूठ बोलना, खुद खुद को दगा देना। न्यूज संसार की पागल है न्यूज के पीछे, इसने ये कहा, उसने क्या कहा, अब उसने वो कहा, उसने क्या कहा, यह पार्टी ने ये किया, वो पार्टी ने क्या किया, सारी बुद्धि उसी में लगी हुई है। ऐसी बुद्धि ज्ञान का चिंतन कब करेगी? सारी बुद्धि खेल में लगी हुई है। हमें याद है बहुत बहुत साल पहले अव्यक्त बाप दादा डायमंड हॉल में आए, बाबा गए शांतिवन की किसी छत पर, कुछ भाई बैठे थे भोजन कर रहे थे, कहीं से आए थे किसी सेवा केंद्र से, और भोजन करते करते क्रिकेट की या कोई मैच की चर्चा चालू थी। एक बड़े बुजुर्ग से भाई बैठे थे, बहुत पुराने, और चुपचाप भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, अभी अभी बाबा आए, अभी अभी भगवान से मिलन हुआ, अभी अभी भगवान गए, और आप लोग ये क्या चर्चा कर रहे हो? तो उन दो तीन भाइयों ने उस बुजुर्ग भाई को ऐसा ज्ञान सुना दिया कि वो चुप ही हो गए, कि बाबा भी बैडमिंटन खेलते थे, यहां से लेके सब कुछ सुना दिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ब्राह्मण ही भटक जाए तो संसार को राह कौन दिखाएगा? जब ब्राह्मणों की को ही उन चीजों में इंटरेस्ट है जिसमें संसार डूबा हुआ है, तो उन डूबे हुए लोगों को बाहर कौन निकालेगा? अब ब्राह्मण ही अगर टीवी और मोबाइल इंटरनेट के एडिक्ट बन जाए तो संसार को डी एडिक्ट कौन करेगा? तो दूसरा कुसंग है संसार का ज्ञान, और दूसरा सत्संग है ईश्वरीय ज्ञान, तीसरा सत्संग है महान आत्माओं का संग, श्रेष्ठ आत्माओं का संग, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं का संग, और कुसंग है उन ब्राह्मणों का संग जो ज्ञान योग से मुक्त है, ज्ञान मुक्त, योग मुक्त और माया युक्त, जो भूले हुए विस्मृति में जी रहे, कहां कहां सेवाओं में ऐसे डूब गए हैं कि अमृत वेला पता नहीं कब किया था, लास्ट सीन भगवान के व्हाट्सएप में लास्ट सीन एक महीना पहले है, नाम सेवा का, परंतु योग जीरो। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं, जिसका नाम मुख पर है, बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, वो केवल मुख पर नाम है, हृदय खाली है, क्योंकि जब तक अशरीरीपन नहीं, और जब तक अमृत वेला शक्तिशाली नहीं, और जब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं, सारी दिनचर्या में कोई कितना भी सेवा में व्यस्त हो, विकार उसे अपनी ओर खींचेंगे, पागल बना देंगे, जैसे वो चीटिया पागल हो गई थी। कुछ दिन पहले लास्ट संडे की मुरली, महारथी अर्थात याद पहले सेवा बाद में, यादे और घोड़सवार अर्थात पहले सेवा फिर याद। ये भूलना नहीं है, कि सेवा इज द फोर्थ सब्जेक्ट, चौथा विषय है। उसको पहला बनाने का प्रयत्न अर्थात स्वयं को स्वयं धोखा देना। ऐसी सेवाएं जिसमें तीन चीजें नहीं है वो केवल संघर्ष उत्पन्न करेगी, अहंकार उत्पन्न करेगी, जहां त्याग, तपस्या और वैराग नहीं। और सीधा सेवा है वहां टकराव होगा, व्यक्तियों में, दो ब्राह्मणों में झगड़ा, लड़ाई, मैं की लड़ाई, मौन युद्ध होगा। एक साथ ही रहते हैं परंतु बात नहीं करते, एक ही जगह पर है, एक ही घर में है परंतु मौन युद्ध, कोल्ड वॉर। ये तीसरा सत्संग किसका करना है? महान आत्माओं का, श्रेष्ठ आत्माओं का, दादियों का, यज्ञ की, इतिहास में जो आत्माएं आई है उनका, या वर्तमान में ऐसी कोई आत्माएं यदि संगठन में है जिन्हें ज्ञान और योग में रुचि है। सेवा तो सभी कर रहे हैं, सेवा के सब्जेक्ट में सब पास, सेवा के लिए मर मिटने को तैयार है, पर सत्संग अर्थात आत्माएं जिनको रुचि है, इंटरेस्ट है। बाप की डांस किन के सामने चलती है? कल की मुरली थी ना, जो शौकीन है ज्ञान के, शौकीन जिन्होंने ज्ञान को हॉबी बनाई है। तो ऐसी आत्माओं को ढूंढना है, यह तीसरा सत्संग, और यह तीसरा कुसंग, चौथा किताबें। चौथा सत्संग है श्रेष्ठ ज्ञान की किताबें, यज्ञ की सारी किताबें, मैगजीन्स, ज्ञानामृत, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअर, हर महीने में कितने अनुभव उसमें आते हैं, स्पार्क की किताबें, अव्यक्त वाणियों के संकलन की किताबें, सारी अव्यक्त वाणियां। यदि हम ये पूछे कि 69 से लेकर तो अब तक की सारी अव्यक्त वाणियां किस किसने पढ़ी है सारी, तो हमें लगता है बहुत ही कम हाथ खड़े होंगे, इसलिए हम नहीं पूछेंगे। क्या सारा? आज बाबा ने कहा है बाप तुम्हें ट्यूशन देने आते हैं क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है, बिन खर्चा पढ़ाता है, तुम यहां मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो। वो ट्यूशन दे रहा है, ट्यूशन एक होता है क्लास स्टडी, एक होता है ट्यूशन प्राइवेट सेपरेट। या पढ़ी पढ़ाई पढ़ पढ़ के हो गई, जो शांति से बैठे और टीवी खोल के टीवी देख रहे हैं, क्या सारी पढ़ाई हो गई कि दो लोग बैठ के संसार की चर्चा कर रहे हैं, गॉसिप्स, यहां क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, मधुबन में क्या हो रहा है, ज्ञान सरोवर में क्या हो रहा है, इस सेवा केंद्र पर वो बहन वो भाई कहां है? व्हाट इज दैट टू यू? तुम्हारा क्या मतलब? माइंड योर ओन बिजनेस। क्या सारी मुरलियां पढ़ के हो गई? क्या सारे ज्ञानामृत पढ़ के हो गए? किन किताबों का हम संग कर रहे हैं? तो ये है सत्संग। कुसंग है संसार की विकारी किताबें, और वो किताबें सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है तो हार्ड कॉपी भी हो सकती है। वो तो नहीं पढ़ते पर ऑनलाइन जरूर पढ़ लेते, वो भी कुसंग है। क्या आंखों से खा रहे हैं, कानों से क्या खिलाया जा रहा है मन को, वो कुसंग है, डुबोएगा। इंटरेस्ट किस में है? और कुछ कुछ आत्माएं ऐसी है उनको कोई भी चीज पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, पढ़ने से पता नहीं कब पढ़ते थे, बहुत पहले कभी बचपन में छोड़ दिया है पढ़ना। बाबा ने कहा ये स्टूडेंट लाइफ है और स्टूडेंट को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, स्टूडेंट को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। जिनको आदत नहीं है वो डालेंगे, आज ही से ढूंढो इस मास की ज्ञानामृत। कितना दिन में पूरी करेंगे? एक हफ्ता, एक दिन, एक दिन, इंद्र सभा है ये, ठीक ठाक जवाब देना। लक्ष्य रखो वो ज्ञानामृत पढ़ के हो जानी चाहिए, कम से कम दो बार पूरी। अगर कुछ भी दूसरी किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कम से कम ये तो पढ़ ही सकते हैं। ये पुरुषार्थ तो सभी कर सकते हैं। कम से कम बुद्धि उस समय उस ज्ञान में लगी रहेगी, कुछ तो चिंतन चलेगा किसी आत्मा का, एक अनुभव कोई, एक अनपढ़ सी माता, उसका कोई तो एक अनुभव दिल को टच कर जाएगा। गरीब से गरीब कोई वही इधर छू लेता है, साहूकार नहीं छूते, गरीब छूते। आज बाबा ने अब्राहम लिंकन को याद किया, बेचारा पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, गरीब था, प्रेसिडेंट बन गया। उसके जीवन को देखो तो जीवन में असफलता ही असफलता है, फेलियर, 14 बार फेल हुआ है अलग अलग। इलेक्शन में खड़ा हुआ फेल, कभी उसकी जिससे प्रेम करता था वो मर गई, एग्जाम दी फेल, लिस्ट है फेलियर्स की 14 फेलियर्स, और लास्ट में 1860 इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसको बाबा ने याद किया आज, इतनी बार असफल हुआ, इतनी बार असफल हुआ, पर रुका नहीं, हारा नहीं, करते गया, कोशिश करते गया, प्रयत्न करते गया, करते गया। गरीब था, तो किताबों का संग करना। अगला ऑडियो विजुअल कंपनी, इसमें भी सत्संग है और इसमें भी कुसंग है। हर दिन लक्ष्य रखना है एक क्लास सुनना है ज्ञान योग की। दादियों की क्लासेस है पुरानी, यज्ञ की क्लासेस है बहुत सारी, यज्ञ इतिहास की क्लासेस है, यज्ञ के जो बड़े भाई बहने हैं सबकी क्लासेस है। ईयरफोन लगाओ, वॉक के लिए चले जाओ, सुनो। कितनी माताओं को हमने देखा है भोजन बना रही है और इधर क्लास चालू है, उस समय को भी सफल कर रही है, ट्रैवल कर रहे हैं क्लास चालू है, वेस्ट नहीं कर रहे टाइम। ये भी तो संघ है, जिनको हमने देखा ही नहीं, अब उनका संघ कैसे करें? जो हमसे बहुत दूर रहते उनका संघ कैसे करें? आवाज द्वारा संग करना है, उनकी आवाज में ही वही शक्ति है जो उस आत्मा में है। आत्मा की शक्ति आवाज से प्रवाहित होती है, आवाज में पावर है, बल है, खींचती है। वो जो खींच है वो आवाज की नहीं, उस आत्मा के पवित्रता की है। तो आवाज द्वारा सुनना क्लासेस, और दूसरा है संसार क्लासेस या गीत बाबा के, और दूसरा है संसार के गीत, संसार का म्यूजिक, संसार का एंटरटेनमेंट, संसार के वीडियो, संसार के ऑडियो, उसी में रुचि। एक बार टेस्ट बैठ गई कि बस उसी में डूब जाता है व्यक्ति, वही वही देखना चाहता है, मूवीज, क्लिप्स, ट्रेलर्स, ऑडियोज, सॉन्ग्स, फिल्म एक्टर, फिल्म एक्ट्रेसेस। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, टीचर से मुलाकात इन्वर्टेड कॉमा, वो संसार के एक्टर, वो संसार के कलाकार हंसा सकते हैं और रुला सकते हैं। वो लोग जो फिल्मों में काम करते हैं हंसाते हैं रुलाते हैं, अशरीरी नहीं बना सकते, केवल तुम ही बना सकते हो हीरो एक्टर्स। वो अशरीरी नहीं बना पाएंगे कभी, वो काम तुम्हारा है। तो वो भी एक कुसंग है। अगला कुसंग है सत्संग, स्थान का सत्संग। स्थान मधुबन सर्वश्रेष्ठ भूमि है, दूसरा सेवा केंद्र सर्वश्रेष्ठ भूमि है, तीसरा कोई ऐसा ऐसी कोई जगह, कोई मंदिर, कोई पवित्र स्थान, जब मन एकदम उदास हो जाए ऐसे स्थानों पर जाना। मधुबन में आ सके तो बहुत अच्छा, नहीं आ सके तो सेवा केंद्र, सेवा केंद्र पर नहीं आ सके तो कुछ ऐसा पवित्र एक स्थान ढूंढ के रखना है, जहां हम जाए तो मूड चेंज हो जाए। स्थान का संग और मन से स्थान का संग करना, यही बैठे बैठे मधुबन के चार धाम की यात्रा करनी है। यह तो सबसे ऊंचा सत्संग है, सबसे महान सत्संग है, यही बैठे बैठे मन से चले जाना मधुबन में। मधुबन में जो सेवाएं की थी, आंखें बंद करके उन सारे दिनों को याद करो, कैसा अनुभव था। मधुबन में जो बाबा से मिले थे, उन मिलन को याद करना यही बैठे बैठे, वो भी सत्संग है, स्थान का संग। और उसी तरह विकारी स्थानों का संग जो है वो कुसंग है। ऐसे स्थान पर चले जाना कि अपने आप ही विकारी भावनाएं उत्पन्न हो जाए, यह है कुसंग। रामायण में दिखाया है राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे सीता को, एक स्थान पर पहुंचते हैं राम, लक्ष्मण थोड़ा अंदर जाता है और उसको विरोधी विचार आने लगते हैं, हे लक्ष्मण तू क्या कर रहा है। लक्ष्मण अपने आप से बात करता है, मैं ये क्या कर रहा हूं, मुझे थोड़ी वनवास हुआ है, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई टाइम, वनवास तो इनको हुआ है, मैं क्यों अपनी पत्नी को और राज्य को छोड़कर आया हूं और मुझे तो यहां से जाना, ऐसे ऐसे बिचो। और फिर बाहर आता है, फिर ठीक, फिर अंदर जाता है, फिर गड़बड़, फिर इधर आता है, वो पूछता है कि हे राम ये क्या हो रहा है। श्री राम कहते हैं बहुत वर्ष पहले यहां दो राक्षस रहते थे भाई, और दोनों शत्रु थे और लड़ लड़ के मर गए, इसलिए वहां के वाइब्रेशंस भी ऐसे है स्थान के। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास कोई संसार का गृहस्थी आता था, संसार की इच्छाएं और संसार के प्रश्न लेकर, वो जहां बैठता था वो जाने के बाद एक फावड़ा लेते थे, वो जमीन को खोदते थे और फेंक देते थे, वाइब्रेशंस। हमारी ओपीडी में जैन साध्वियां आती है जो दिलवाड़ा मंदिर में एक एक मास तक रुकती है, पैदल आती है नीचे से, जब ओपीडी में आती है बैठती नहीं है उस चेयर पर, अगर वहां कोई पुरुष बैठा हो कुछ समय पहले तो खड़ी रहती है, खड़ी रहकर ही हिस्ट्री सुनाती है, क्या तकलीफ है, वाइब्रेशंस। उनको इतनी चिंता होती है अपनी पवित्रता की। स्थान, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है कि जहां विकारी लोग रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी पवित्रता इतनी शक्तिशाली है कि हम वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि उनका कल्याण करें, परंतु जब पौधा छोटा है तो उसको सुरक्षा करनी होती है, उसको बड़ा हो जाने दे, वटवृक्ष बन जाए तो हाथी भी खींचे तो कुछ नहीं होगा, पर हाँ अगर किसी को लगता है हम हाथी, हम वटवृक्ष बन गए तो जाओ, पर जिनको लगता है अभी हम छोटे हैं, अपने रक्षा करनी होती है संसार के प्रलोभनों से। और अगला सत्संग है प्रकृति, प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का सानिध्य। जब मन एकदम ही नीचे चला जाए तो प्रकृति में जाओ, जहां आकाश है, जहां समंदर है, जहां झरने हैं, जहां पहाड़ी है। और हम कहेंगे हमारा, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, छत तो है, बगीचा तो है, ऐसे प्रकृति का सानिध्य भी सत्संग है। और उसी के विरोध में भीड़ भाड़, आवाज, लौकिकता, ये कुसंग है। तो ऐसे ये सत्संग और कुसंग। तो स्वयं को बाबा ट्यूशन लेने आए हैं, शक्तिशाली बनाना है, शक्तियों का प्रयोग करना है, वरदान में कहा है, तो सिद्धि स्वरूप बनोगे। तुम्हारे पास सारी शक्तियां है, तुम्हारे पास बुद्धि की शक्ति है, तुम्हारे पास अविनाशी धन की शक्ति है, और तुम्हारे पास पोजीशन की शक्ति है, तीन, इसको प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।